के आधार से हमारा भी सारवा पत्रांक चल रहा है। कर्म की अवस्थाएं जो हमने देखी थी पहले ये नक्की किया था कि जीव की जो अवस्थाएं वो जीव की अपने से होती है, और कर्म में जो कुछ अवस्थाएं बनती है वो कर्म में भी उसकी अपनी योग्यता से बनती है। दोनों में समय एक होता है तब उसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, परंतु वो एक दूसरे में कुछ भी नहीं करते। ये मूल स्वतंत्रता ध्यान में रख कर अभी ये निमित्त की भाषा हम अगर बोलेंगे तो उस कथन में तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु यदि अभिप्राय अगर हम निमित्त को कर्ता मानते हैं तो ये अभिप्राय की गलती है, ये मिथ्यात्व है। तो ये बात मूल में ध्यान में रख कर अभी कौन कर्म में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, हमने 10 अवस्थाएं गिनी थी, याद है कौन सी? हाँ निकट, इसमें से तो बंध क्या है, उदय क्या है, सत्ता यानी स्थिति क्या है, ये सारी हमने यानी स्थिति कितनी होती है वगैरह वगैरह देखा था, और सत्ता यानी कर्मों का जीव के प्रदेशों में बना रहना, और फिर जब उदय में आकर निकल जाएंगे तब उसको फल देना, ये जो है तब तक हम कहेंगे वो सत्ता में पड़े है, उसको सत्ता कहते हैं। अब आगे की जो अवस्थाएं वो क्रम से हम देखेंगे। जीव और कर्म की स्वतंत्रता देखने पर तुमने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि जब इस तरह की स्वतंत्रता है तो फिर कर्म का स्वरूप और उसकी अवस्थाएं जानने का प्रयोजन ही क्या है, प्रश्न उठता है। दोनों स्वतंत्र ही है तो कर्म की बातें हम जाने ही क्यों, हम तो अकेले जीव को ही जाने और उसी को जानते रहे, हमें केवल जीव संबंधी ही जानकारी दे दो ना। दूसरा प्रश्न है कि कर्म की बंध उदय उदीरणा उपशम आदि अवस्थाएं तो हमने जान ली, तो फिर अब हम कर्म का उपशम करा दे या उदीरणा करा दे या उदय ही रहने दे। दो प्रश्न, एक तो कर्म की अवस्थाएं जाननी क्यों, और यदि अभी हमारे ज्ञान जानने में तो आ गई, हमने स्वरूप समझा, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, उपशम करना चाहिए कि उदय ही रहने देना चाहिए? हाँ इंदु बेन, हाँ हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो मूल में जानना है, इसका नक्की करना है अभिप्राय। पहले प्रश्न का उत्तर प्रथम देखते हैं। जीव ने अनादि से अपना स्वरूप ही पहचाना नहीं, वह जीव निरंतर कर्म के उदय में प्राप्त शरीरादि में आत्मपना यानी एकत्व संयोग में ममत्व, ज्ञानादि की हीनता जितने ही अपने ज्ञानादि और रागादि विभाव परिणाम ही अपना स्वभाव मानता आ रहा है। कितनी सारी भूले की, एक तो कर्म के उदय में कोई शरीर प्राप्त हुआ तो वही मैं हूँ ऐसा मान लिया, साता असाता के कारण कुछ संयोग इष्ट अनिष्ट मिले तो वो मेरे है मान लिए, फिर ज्ञान की तो कम अधिकता होती रहती है, तो यही मेरा, कोई बुद्धिमान हुआ तो हाँ देखो मैं इतना बुद्धिमान हूँ, और कोई मतमंद हुआ तो अपने को हीन दीन मानने लगा, यानी उतना ही मेरा स्वरूप है ऐसा मानने लगा। और राग द्वेष तो निरंतर हो ही रहे, तो राग द्वेष करने को भी अपना स्वभाव मानता है, देखो मैं क्रोधी हूँ या मैं दयालु हूँ ऐसे ही मानता है। आत्मज्ञानी संत जब उसे उपदेश देते हैं, देखिए अनादि से ऐसा ही मार्ग है, जब जब कोई मिथ्यात्व से समय दृष्टि होगा उसके पहले उसको आत्मज्ञानी कोई गुरु, गुरु यानी मुनि की बात नहीं, कोई भी आत्मज्ञानी पुरुष के द्वारा, आत्मज्ञानी जीव के द्वारा उसको उपदेश मिलेगा। तो क्या उपदेश देते हैं, हे जीव तू इन सबसे भिन्न है, तू स्वयं परमात्मा है, केवल ज्ञान आदि सामर्थ्य का धारी है। इस बात को ही कोई जीव कबूल करने को तैयार नहीं होता, जब मोह उसका तीव्र है तो अरे हम कहे कि भगवान ऐसा करके टाल देता है। तब देखो आगे लिखा ये, तब यह जीव हंस देता है, बताने वाले की मजाक उड़ाता है, विश्वास नहीं करता और कहता है ये सारी हाई लेवल की ऊंची बातें हमें मत बता। सीधा सम्यक दर्शन का उपदेश करे तो अरे वो तो बाद में, अभी तो अभी हमें क्या करना चाहिए वो बता। यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये पहले में पहला कदम है, ये वो नहीं जानता, ये उसको मानना नहीं चाहता, विश्वास रखना नहीं चाहता। नहीं नहीं अभी तो हमारे लेवल की बातें बताओ, वो सम्यक दर्शन बाद की बात है, ऐसे ही बात टाल देता है। हमारे बौद्धिक स्तर के अनुसार हमारी लेवल की बातें हमें बता दीजिए, इस तरह कैसा उपदेश देना इसकी सलाह वह ज्ञानी को ही देता है। ज्ञानी तो पता है कि इसका कल्याण किसमें है, तो वो तो पहले में पहले वही बात करेगा कि जिसमें इसका कल्याण है। वो बात आती है ना कि कोई एक गांव, ऐसे एक गांव था तो वहाँ एक कोई ब्राह्मण था, तो उसको ऐसी इच्छा हुई चलो अपनी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, तो गया कोई गुरु मिल गया उसको, तो उसने कह दिया अरे तू ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, उसका चिंतन कर ध्यान कर तो तुझे ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो वो गया कहीं ढूंढते ढूंढते काशी में गया, तो वहाँ नदी किनारे, गंगा नदी किनारे कोई मिला उसको, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा तू कहाँ से आया? वहाँ से आया, तो इतने दूर से आया, चलो अभी मेरे घर में आ जाओ तुम, ये सारी सेवा टहल करो, ये रोज का जो घर का काम है बाहर जो है वो सारा करो। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए, तो 12 साल बीत जाने के बाद उसने पूछा अब मुझे कोई उपदेश दे दो ब्रह्म कैसा प्राप्त करना, इतने सारी सेवा कष्ट सारे हो गए, इतनी क्रिया कर, ये ऐसा कर वैसा कर वैसा कर सारा हो गया, अरे तू तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, अपना चिंतन कर अपना ध्यान कर, अरे ये बात तो मुझे 12 साल पहले बताई थी, मगर तो तब तो मानने को तैयार नहीं था, कुछ क्रियाएं करने से मुझे धर्म होगा मुझे ब्रह्म प्राप्त होगा ऐसा मानता था। ऐसे ये भी जीव नहीं, मैं अभी पूजा करूं, मैं अभी व्रत करूं, मैं अभी ऐसी किया कुछ क्रियाएं करूं तो मुझे धर्म होगा, ऐसे कुछ न कुछ करना चाहता है, परंतु अपना स्वरूप समझना यही मूल में मूल है, यह बात उसके गले नहीं उतरती है, उस पर वो विश्वास ही नहीं रखता, सबसे सरल है ना, तो उसे लगता है अरे इतनी भारी बात, ये ऐसे सरल क्या उपाय हो सकता है, इसको कोई भारी उपाय करना पड़ेगा। कर्म का स्वरूप उसके बंध के हेतु यानी बंध के कारण, उसके उदय में होने वाली जीव की अवस्थाएं, कर्मजन्य दुख आदि बातों का विस्तृत वर्णन सुनने पर उस संबंध में अपनी भ्रामक कल्पनाएं नष्ट हो जाती है। ये सारा हमने शॉर्ट में देखा है ना अभी, उस संबंध में अपना ज्ञान दूर होकर अपनी मिथ्या श्रद्धा में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। देखो ये सारी बातें हम पढ़ते तो मिथ्यात्व भी मंद मंद होता है, पहले तीव्र मिथ्यात्व था तो अभी कुछ कर्म के बारे में अपने स्वरूप के बारे में जब जीव सुनता है तो उसका मोह भी मंद हो जाता है, इन बातों का विश्वास होता है और उसके बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए हम उद्युक्त होते हैं। तीव्र मिथ्यात्व में जीव को ऐसे विचार ही नहीं होते, अब जब ये सुनकर जो मिथ्या संबंध हो जाता है तो उस तरफ उसके विचार होना चालू हो जाता है। तीव्र अवस्था में ऐसे विचार भी नहीं उसको उठते, अपने स्वरूप के बारे में उसके विचार भी मन में नहीं आते, अपने हिताहित का उसका निर्णय ही नहीं होता। निर्णय की तो बात आगे है, उस संबंधी विचार आना ये तो पहली शुरुआत है। इन बातों का विश्वास होता है, ये बात पढ़ी हुई है। मूल बात तो अपने स्वरूप का विश्वास करने की थी, ये अपना ही विश्वास नहीं ना। अरे आत्मा है, आत्मा है, होता है, किसने देखा है उसको, कैसे मैं स्वयं आत्मा हूँ, इसी बात को वो नहीं मान रहे। शास्त्र में सम्यक्त्व के कारणों की अपेक्षा से जो भेद बताए हैं, उनमें से आज्ञा सम्यक्त्व नाम का एक भेद बताया है। कल हमने कौन सा देखा था भेद? बीज सम्यक्त्व, और यह है आज्ञा सम्यक्त्व। वो क्या है कि जिनेन्द्र भगवान का उपदेश ही शिरोधार्य है, त्रिकाल सत्य है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा वाले सीधे साधे लोग जिन्हें शास्त्रों की बारीकियों का पता नहीं है, ये कुछ पढ़े नहीं है इतने सारे, कोई डेफिनेशन व्याख्या परिभाषा उनकी याद नहीं है, कुछ उनको पूछो तो कुछ बताएंगे नहीं, फिर भी ये पूरी दृढ़ श्रद्धा है कि ये जिनेन्द्र भगवान जो कहते हैं वो त्रिवार सत्य है। तो परंतु जिन्हें उस उपदेश पर पूर्ण भरोसा है, उन्होंने कहा तो स्वयं भगवान है। हाँ जिनेन्द्र भगवान बता रहे, हाँ मैं स्वयं भगवान हूँ। कैसे प्राप्त करना है? तो इस विधि से करना है। तो सीधा सरल उसको विश्वास कर लेता है, ऐसी सरलता है उसमें, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। ये क्या ना, 11-9 पूर्व पढ़े तो शास्त्र का ज्ञान नहीं था, ऐसी बात नहीं है, फिर भी उसमें से मर्म नहीं जाना, मर्म नहीं पकड़ा, तो उस उपदेश पर पूर्ण भरोसा है। ऐसे जीव आत्म सन्मुखता द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। और भी देखो, आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। जो जानता है वह सब कुछ जानता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। जानना ही जिसका स्वभाव है, वो स्व को जाने और पर को नहीं जाने, या पर को जाने और स्व को नहीं जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी ये हमारे जानने में आ रहा है ना, इसका ज्ञान हो रहा है, यानी हमारे में ज्ञान है ये तो नक्की हुआ। अब ज्ञान जो है, तो ज्ञान है तो वो सभी को जानेगा, इसलिए मैं मुझे मेरे ज्ञान में नहीं आ सकता, ऐसी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जानना ही मेरा स्वभाव है। कर्म को हम पर रूप से जान रहे हैं, यदि हम अपने अभिप्राय में पर को जानने का ही निषेध करेंगे तो हम ज्ञान का स्वरूप ही नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। जैसे दर्पण का स्वभाव प्रतिबिंबित करना यानी रिफ्लेक्टिविटी है, यदि मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे एक ऐसा दर्पण ला दो, परंतु एक शर्त है, वह दर्पण ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रतिबिंब न झलके, तो ये संभव है? तो वो दर्पण ही नहीं रहेगा, उसको कोई दर्पण ही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो झलकाना यही उसका स्वभाव है। वैसे ज्ञान पर को जाने ही नहीं तो वो ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्व को और पर को दोनों को जानना ही उसका स्वभाव। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, ये पहला प्रश्न कौन सा था कि वो उसके अवस्थाएं जाने क्यों पर की, तो पर की क्यों जाने, तो जानने का स्वभाव है, जीव का स्वभाव ही सबको जानने का है, स्व को भी जाने और पर को ही जाने। पर का जानने का अगर निषेध अपने अभिप्राय में होता है कि ये क्या जानना, इसको नहीं जानना, उसको नहीं जानना, उसको नहीं जानना, अपने को जानते रहो, यानी पर के जानने का अगर निषेध अपने अभिप्राय में होगा तो उसने ज्ञान का स्वरूप ही नष्ट कर दिया, यानी ज्ञान का सही स्वरूप ही नहीं जाना। यहाँ जानने का निषेध नहीं है, केवल ही भगवान तो पूरे लोकालोक को जानते हैं, परंतु उसमें जो आत्मपने की बुद्धि है, उसमें जो ये ममत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो उसका निषेध है, उस मिथ्यात् मान्यता का निषेध है, जानने का निषेध नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न कि हमें अब कर्म की हम कौन सी अवस्था बना दें, उपशम करें कि उसका उदय ही रहने दें, कि कर्म की कौन सी अवस्था को हम करें, उपशम करें या क्षय करें। तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे प्रश्न उठा कि मैं हंसू या रोऊं। पूरी रामायण सुनने के बाद कोई पूछता है कि सीता राम की क्या लगती है, वैसे हुआ। यानी ये प्रश्न के द्वारा और ज्यादा कोई भूल गया हो कि हम कुछ कर्म में नहीं कर सकते, ये बताने के लिए दोबारा ये प्रश्न इसे उठाया और उसका उत्तर दे रहे। जीव और कर्म की स्वतंत्रता इतने विस्तार के साथ देखने पर उसका तात्पर्य यह था कि जीव कर्म के एक परमाणु को भी पलटा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता, पास ला नहीं सकता। कर्म हो या शरीर हो या अन्य पुद्गल परमाणु हो या अन्य जीव हो या कोई भी अन्य द्रव्य हो, जीव किसी का भी कभी भी कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं करता, कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि तुम कर सकते और अभी नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, कर ही नहीं सकते। मूल में जो तत्व का निर्णय है ये जरूरी है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। कोई रोगी हो तो उसका प्रयोजन है दवाइयां खाकर ठीक होना, स्वस्थ होना। यदि उसे उन दवाइयों के बारे में ज्ञान होगा तो वह दृढ़ विश्वास के साथ दवाई खाएगा। वैद्यकीय विद्यार्थियों को औषधियों के गुणधर्म, पेट में जाने के बाद उनमें होने वाली विविध रासायनिक प्रक्रियाएं, वह औषधि किस रासायनिक रूप में असर करती है, कितने काल तक उसका असर टिकता है, उस औषधि का शरीर के बाहर विसर्जन किन अवयवों द्वारा होता है, आदि सैकड़ों बातों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे जानकार वैद्य को रोग होने पर औषधि खाने का प्रसंग आ जाए तो वह भी मात्र औषधि खाने का ही काम करता है। ज्ञान है वो क्या काम करेगा, खाना। तो खाने के बाद वो कौन से अवयव में जाना अभी उसको डालेगा, उसकी क्या प्रोसेस करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो जानता है बस कि ये ऐसी औषधि पेट में गई, अब ऐसे ऐसे होने वाला है, उसमें वो कुछ नहीं करता। खाने के बाद औषधि में अब मैं कौन सी रासायनिक प्रक्रिया करूं, ऐसा सवाल उसे नहीं उठता। ये तो उदाहरण हुआ। उसी प्रकार कर्म की अवस्थाओं का मात्र ज्ञान ही करना है। कर्म की विशिष्ट अवस्था के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब अवस्थाओं को जानकर पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। पुरुषार्थ करना कोई वचन उठाना नहीं है। ये पुरुषार्थ करना यानी जीव को क्या लगता है, हाँ अभी तो हम समझे, अभी प्रैक्टिकल क्या पुरुषार्थ कैसे करना, ऐसे लगता है ना, अभी कुछ करना है, क्योंकि करो की अनादि की मान्यता है, हम कुछ करते तो होता है ऐसा लगता है, तो अभी हम क्या करें, प्रश्न तो ऐसा ही है ना। तो क्या करना है पुरुषार्थ, तो स्वयं की स्वतंत्रता का स्वभाव का ज्ञान करके उसके अनुसार तत्व निर्णय करना, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अन्य कुछ नहीं है। ये जो हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं उसमें से निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, निमित्त से कार्य में कुछ नहीं होता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रपणे अपने अपने पर्याय का करता है, पर्याय भी अपने स्व समय के पर्याय की योग्यता से उत्पन्न होती है, अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। ये सारी बातों का ज्ञान करने के बाद कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है और मेरे सारे तीन काल की पर्याय भी निश्चित है, ऐसा कहकर अभी पर्यायों का लक्ष्य छूट जाता है और अपने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य हो जाता है, और यही पुरुषार्थ है, अन्य कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान तो हुआ, परंतु यदि यथार्थ तत्व निर्णय नहीं होगा तो जीव हतोत्साह हो जाएगा, घबरा जाएगा, क्या करे। यानी अभी उसने कर्म की सारी बातें सुन ली कि ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है, दर्शन मोनी के इतनी सबसे कोड़ा कोड़ी, तो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं कि मैं स्वयं का अपने ओर लक्ष्य दूं तो ये कर्म निकलने जाने वाले वो अपने आप में है, मुझे कुछ वो तकलीफ नहीं देते हैं, मुझे पराधीन नहीं बनाते। ऐसा अगर तत्व निर्णय नहीं होगा तो कर्म की बातें सुनकर भी वो घबरा जाएगा। वो क्या कहेगा, क्या करे, दर्शन मोनि का उदय है इसलिए मुझे मिथ्या तो परिणाम होता है, ऐसी उस जीव की मान्यता रहती। उसे समझाना होगा कि जो जीव तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा में एकाग्र होता है उसके दर्शन मोनि कर्म के उदय का अभाव होकर उपशम हो जाता है, करना नहीं पड़ता, ये सारा ऑटोमेटिक हो जाता है। अनेक लोगों ने निधत्य और निकाचित कर्मों का हवा बनाया है। ये तो कर्म की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा हम बाद में करने ही वाले हैं। चूंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के द्योतक है। द्योतक यानी बताने वाले, करने वाले नहीं है। एक बात और भी है कि तुम्हें और हमें कर्म जब दिखता ही नहीं तो उसकी विशिष्ट अवस्था तुम बदलोगे कैसे? या हमें उपशम करना है या क्षय करना है वो तो दिखाई नहीं दे रहे, तो कैसे करोगे? जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है, सर्व कर्मों की स्थिति घटती है और नवीन बंध कम स्थिति वाला होता है। हमने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर देखी थी, वह घटकर अंत कोड़ाकोड़ी सागर यानी एक कोड़ाकोड़ी सागर से कम हो जाती है। ये तो सहज होता है। कब? ये सारी बातें हम उपदेश सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, तत्व का निर्णय करने लगते हैं। अभी सम्यक्त होने की बात तो आगे है, उसके पहले से ये सारी बातें हो जाती है। प्रायोगिक लब्धि में आता है जीव तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर इतनी स्थिति घटकर रह जाती, नया बंध भी कम स्थिति वाला, अकेली स्थिति घटती ऐसा नहीं, उसका अनुभव भी हर समय अनंत गुणा कम, अनंत गुणा कम, अनंत गुणा कम ऐसा हो जाता है। तीव्र अनुभव घटते सारे कर्मों का, आयु को छोड़ो, ऐसा नहीं खाली मिथ्या तो मंद पड़ा और बाकी सारे तीव्र है, ऐसा भी नहीं, सारे ही कर्मों का अनुभव कम हो जाता है। यह सब अपने आप होगा, हमें और तुम्हें कर्म में कुछ भी उतल पुतल करनी नहीं पड़ती। अब चर्चा चल ही रही है तो दर्शन मोहि कर्म का उपशम कैसे होता है वह बता दो। ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला जीव, ये कैसे ऊपर कहे अनुसार है? जिनेन्द्र भगवान ने जो मार्ग बताया उसके अनुसार, अपने मन के अनुसार चाहे जैसा पुरुषार्थ करे वो नहीं, सही उपाय होगा तो सही वहाँ कार्य होगा ही होगा। तो ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला जीव जब आत्मा में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है तब उसे करण लब्धि प्राप्त होती है, वह करण परिणाम मानता है। यानी क्या कि सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व में प्रकट होने वाले विशुद्ध परिणाम प्रकट करता है। ये करता है, करता है, ये भी भाषा है, वो तो होते ही उसके परिणाम ऐसे ही हो जाते हैं। तब दर्शन मुनि कर्म में भी भगदौड़ मच जाती है। पहले हमने देखा था कि आठों ही कर्मों का उदय सदैव होता रहता है, यानी निरंतर उसका उदय चलता रहता है। जब जीव सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करने के समय अंतरंग में लीन होता है तब आठ कर्मों में से पहले से मंद पड़े हुए दर्शन मोह के उदय में क्या घटना घटती है उसे देखते हैं। यानी अन्य कर्मों की बात नहीं, अभी हमने देखा था ना हरेक कर्म में निषेक रचना तो बनी हुई है, अभी अनेक समयों में बंधे हुए एक साथ कर्म उदय में आते हैं। अब वो तो एक समय बंधने वाले की निषेक रचना, अब जो निकल गए जा रहे ना, अभी सप्ताह में बहुत सारे कर्म हमने बहुत काल से बांधे हुए है तो अभी इतना निकलने वाला है, फिर इतना निकलेगा, फिर इतना निकलेगा, उसकी भी सत्ता की ये निषेक रचना है। ये सारे मिले हुए परिणाम एक एक समय में एक एक निषेक पूरा कर रहा है, उसका हमें फल भी मिल रहा है। तो ये जो है उसका भी मंद मंद अनुभव, उसके परमाणु तो उतने रहेंगे, उसमें जो शक्ति है वो मंद हो जाएगी, परमाणु की संख्या तो रहेगी उतनी रहेगी, परंतु पहले जितना तीव्र था अभी वो मंद हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या घटता है वो देखते हैं। करण लब्धि के परिणाम एक अंतर मुहूर्त काल तक रहते हैं। हाँ, पहले से मंद पड़े ना, क्यों पड़े? पहले देश ना मिली, प्रायोगिक लब्धि में उसका उसके ऊपर विचार चल रहा है तो उसमें मिथ्या तो मंद, हर समय मंद मंद मंद, क्योंकि हमने देखा था हर समय प्रति समय अनंत गुणा घाटी, अनंत गुणा घाटी, अनंत गुणा घाटी, तो कितना मंद 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 होता है। तो इसलिए लिखा है पहले से मंद पड़े हुए। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में क्या होता है वो देखते हैं। करण लब्धि के परिणाम एक अंतर्मुहूर्त काल तक रहते हैं, उनके निमित्त से उस अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी उदय में आकर खिलते हैं। अभी ये तो सारे ऐसे निषेक पड़े हैं, ये हमारा वर्तमान समय यहाँ है, अब यहाँ भी जीव के अंतर्मुख परिणाम चल रहे, अभी प्रायोगिक लब्धि में से वो करण लब्धि में आ गए तो और उत्कृष्ट उसके विशुद्ध परिणामों की विशुद्धि और बढ़ी, आत्म सन्मुख है ना, तो समझो इतने काल तक वो करण लब्धि वो मानने वाला है। तो उस काल के पश्चात यहाँ जो कर्म उदय आने योग्य है ना, ये मिथ्या तो के निषेक यहाँ भी पड़े हैं, तो उसमें से कुछ निषेक नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं और जल्दी उदय में आते हैं, और कुछ निषेक ऊपर की ओर चले जाते हैं, यानी उनकी स्थिति घटती है किसी में, किसी में ऊपर जाती है, और ये भी उसमें भी मंदता आती ही जाती है, क्योंकि ये करण लब्धि के परिणामों में जो अंदर पड़े हुए सारे सत्ता में कर्म पड़े उनके भी अनुभव घटता चला जाता है। अब इतना काल वो करण लब्धि मान लेगा, उसके पश्चात जो ये बीच वाले वहाँ गैर तैयार होते अकेले दर्शन मोह में, अन्य कर्मों का तो उदय उसकी निषेक रचना और उनका उदय तो चलता रहेगा, इसको कहते हैं ये गैप अंतर हुआ। देखो क्या कहते हैं कि उन तीसरी लाइन, उन निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी उदय में आकर गिरते हैं और बाकी निषेक भविष्य के निषेकों में जाकर मिलते हैं, इस कारण क्रम से उदय में आने वाले दर्शन मोहनीय, अभी दर्शन मोहनीय में यहाँ अकेला मिथ्यात्व ही है, क्योंकि मिथ्यात्व का ही बंध होता है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंधने योग्य प्रकृतियां नहीं है, वो बाद में बनती है, जब एक बार सम्यक हो जाता है उपशम सम्यक तो उस काल में उसके तीन टुकड़े होते हैं, तो अभी खाली अकेला मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में अंतर पड़ता है, गैप तैयार होती है, ये दिखा ना, ये अभी जैसे हमने देखा यह अंतर एक अंतर्मुहूर्त काल का होता है, और उतने काल तक मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, उपशम हो जाता है, इसे अंतरकरण रूप उपशम कहते, ये गैप तैयार हुई उसको कहते अंतर हुआ, परंतु बाय चांस ऊपर के समझो नीचे आ जाए तो पॉसिबिलिटी है ना, कि यहाँ के मिथ्यात्व कर्म जो है वो नीचे आए तो क्या होता है, अंतर तो होता ही है, परंतु जो भविष्य में पड़े हैं वो वही रहे, नीचे न आ सके, ऐसी उसमें कंडीशन हो जाती, उसको कहते उपशम किया, ये किया तो इसको कहते अंतर किया। तो अंतर के जो ऊपर के निषेक है वो जब जीव यहाँ करण लब्धि मानकर यहाँ तक आ गया तो उसको औपशमिक सम्यक तो हो गया, क्योंकि यहाँ कोई मिथ्यात्व नहीं है, पहले अंतर करता है और उसके थोड़े समय बाद उपशम भी करता है, नीचे के जो फिरते रहते हैं
और कुछ बाकी रहेगा,
ये नहीं निषेकों की बात नहीं, ये करण लब्धि का काल है, करण लब्धि मानते मानते जीव ने पहले अंतर कर दिया, यानी करण लब्धि मान लिया नहीं, इतने समय निकल गए ना, अभी और समय बाकी है, उसके करण लब्धि चल ही रही है, तो पहले अंतर करने के बाद और उसने उपशम भी किया ऊपर इनका, अभी सम्यक नहीं हुआ, और जब यहाँ आ गया वो जीव तब यहाँ कोई मिथ्यात्व कर्म उदय में रूप नहीं है, और जीव के परिणाम भी सम्यक रूप है, यानी दो निमित्त निमित्त है ना, ऐसा नहीं कि वहाँ उदय नहीं इसलिए सम्यक हुआ, जीव ने अपने परिणामों में श्रद्धा गुण कैसा हुआ तब सामने वहाँ कोई मिथ्यात्व कर्म भी नहीं है, तो समझो यहाँ मिथ्यात्व नहीं है, ये इसका सम्यक तो यहाँ तक चालू रहेगा, और बाय चांस ऊपर के मिथ्या तो परिणाम ये निषेक आए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन सारों को उपशम किया है, उपशमित किया है, अभी एक एक अवस्था हम जैसे आगे देखेंगे तो उसका ख्याल आ जाएगा। तो ये जो अंतर करके उपशम किया इसको कहते अंतरकरण रूप उपशम, उसी समय चारित्र मोहनीय का अनंतानुबंधी कर्म भी उदय में नहीं आता तो क्या होता है, वो प्रत्यागम प्रत्यागम रूप से उदय चलता रहता है, भविष्य काल में उसके निषेक पड़े रहते हैं उनका सदवस्था रूप उपशम होता है, ये अंतरकरण रूप उपशम किया है वो तो यहाँ आ ही नहीं सकते, अभी सदवस्था रूप उपशम उसमें हमने देखा था कि दूसरा गुणस्थान तो अभी आपने सबने सुना है, तो बाय चांस ये ऐसा सम्यक तो करते करते ये अंत एक समय या छह अवली काल शेष रह गया। मिथ्यात्व का तब उदय नहीं आ सकता, परंतु अनंतानुबंधी का आ सकता है। और यदि सम्यक्व के ये इतना काल तो सम्यक्व था और उसके पहले ही अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो क्या होगा? सासाद दूसरा गुण स्थान में जाएगा और ये काल पूरे होते ही मिथ्यात्व का भी उदय चालू हो जाएगा। सासादन में तो अकेला अनंतानुबंधी का उदय है और फिर और इतने समय पास करके वो यहाँ तक आ जाएगा तो ये सासादन का इतना काल है और यहाँ मिथ्यात्व का भी उदय यानी अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों का उदय हो जीव पहले गुण स्थान में आ जाएगा। दूसरे में से फिर दोबारा नहीं, पहले में आया, पहले में बाद में वो फिर से प्राप्त कर सकता है, वो साधी मिथ्या दृष्टि बनेगा। उसकी चर्चा तो गुणस्थानों में करेंगे, अभी तो हम खाली कर्मों की अवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि गुणस्थानों में घुस गए तो और उसकी चर्चा लंबी हो जाएगी। अनादि से कर्म का बंध और उदय निरंतर चल रहा था, उसमें दरार पड़ जाती है। पहले तो ऐसा ही था ना, उसका उदय भी होता रहे और जीव वैसा परिणाम भी होता रहे, राग द्वेष भी करता रहे, नया कर्म भी बनता रहे, तो ये अनादि का चक्कर चल रहा था, एक दो चार साल का नहीं। तो अभी इसमें तो दरार पड़ गई, बीच में गैप आ गए, मिथ्यात्व का भी वहाँ उदय नहीं है, जीव ने सम्यक को प्राप्त कर लिया। सभी कर्मों का सरदार मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहनीय कर्म ही सबसे पहले शस्त्र डालकर भाग जाता है। इसके लिए जीव को कर्मों में क्या करना पड़ा? कुछ भी तो नहीं। जीव जब स्वयं में सम्यक्त्व की पर्याय सर्वप्रथम प्रकट करता है तब सामने दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय कर्म लिखा है। अकेला कषाय नहीं, कषाय तो जीव करता है और यहाँ कर्म की बात चल रही है। तो वहाँ मिथ्यात्व नाम का कर्म और अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उपशम होता ही होता है। बाय चांस जीव सम्यक तो करे और उपशम न होए, उसका उदय बना रहे और जीव यहाँ सम्यक तो करे, ऐसा हो नहीं सकता।
तो आपने क्या कहा, यहाँ दो बातें आई, जीव का कषाय फॉर्म
नहीं, अकेले कर्म की बात है कि जीव जब सम्यक तो प्राप्त करता है तो सामने कर्म में क्या बनता है? मिथ्यात्व नाम का कर्म और अनंतानुबंधी नाम का जो कर्म है उन दोनों का उपशम होता है। जीव भी वो अनंतानुबंधी वाले कषाय नहीं करता है, जीव भी मिथ्यात्व के परिणाम नहीं करता है और सामने कर्म में भी उसके उपशम अवस्था पाई जाती है, दोनों एक समय में नहीं। परंतु पहले इनका उपशम हुआ इसलिए जीव को पुरुषार्थ के बिना ही सम्यक तो प्राप्त हुआ, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। देखो दोनों ही ओर से नक्की किया, जीव जब सम्यक तो करता तो वहाँ उपशम होता ही है, परंतु ऐसा नहीं कि वहाँ उपशम हुआ इसलिए जीव को चलो आराम से बाय चांस मिल गया सम्यक तो का चांस, ऐसा नहीं होगा। तो इसी विधि से होगा कि जीव देशना सुनेगा, प्रायोगिक लब्धि में विचार करेगा, करण लब्धि में अंतर्मुख परिणामों में वो गहराई में उतर जाएगा और उसको सम्यक तो प्राप्त करेगा, वो तो कर्म में ये अवस्थाएं अपने आप बनेगी। रेडीमेड गैप नहीं है कहीं पड़ी हुई, इसलिए कहते तुम करोगे तो होगा, हमको समय तो कब होगा, अभी करो अभी होगा, वो पराधीनता नहीं है वहाँ। कर्म की उपशम अवस्था के कारण इस सम्यक्त्व को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। कर्म की उपशम अवस्था मात्र मोहनीय कर्म में ही हो सकती है। उपशम भाव कितने हैं? उपशम भाव जीव के औपशमिक भाव कितने हैं? कौन से हैं? हाँ, ये उपशम किसमें किसमें हो सकता है? मोहनीय में, दर्शन मोहनीय में कहो या चारित्र मोहनीय में कहो, दर्शन मोहनीय का उपशम है वो औपशमिक सम्यक और चारित्र मोहनीय का उपशम होता है तब वो औपशमिक चारित्र यानी वो उपशम श्रेणी चढ़ता है ग्यारहवें गुण स्थान में। उनमें से दर्शन मोहनी कर्म के उपशम के समय जीव की औपशमिक सम्यक्त्व अवस्था होती है और ग्यारहवें गुणस्थान में चारित्र मोहनी कर्म के उपशम के समय जीव की औपशमिक चारित्र अवस्था पाई जाती है। ध्यान रहे दर्शनों का उपशम होने पर भी उस समय अन्य सभी कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है। ऐसा मत समझना सारे ही कर्मों में गैप पड़ गए, ऐसा हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा उस गैप में, बाकी का तो उदय चल रहा है सारा, उपशम ही मोक्ष होगा। फिर दोबारा में संसार में लौटना पड़ेगा। कर्म की 10 अवस्थाओं के नाम हमने देखे थे, उनमें से बंध, सत्ता और उदय का स्वरूप हमने देखा, उपशम की भी अभी अभी चर्चा की। अब उर्वरित अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। उदीर्णा, अभी उदीर्णा उदय तो शब्द हमने सीखा था कि स्थिति पूरी होने पर कर्म जो फल लेकर छूट जाता है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध अभी बना नहीं रहेगा युग के साथ, तो उसको कहते हैं उदय। अब उदीर्णा ऐसा भी शब्द आता है तो उसका अर्थ क्या है वो देखें। उदयोन्मुख कर्म, यानी अभी जो उदय होने योग्य है ऐसा जो कर्म जल्दी उदय में आने को उदीर्णा कहते हैं। उसकी आगमोक्त परिभाषा है, यानी पुस्तक में कैसी परिभाषा लिखी है कि उदयावली के बाहर के निषेकों का, ये सारा समझेंगे इसका अर्थ भी, उदयावली क्या है वो समझेंगे। उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना और जल्दी उदय में आना उदीर्णा कहलाता है। इसका अर्थ बाद में देखेंगे, उसके पहले दृष्टांत देकर समझाऊंगी, हम भी उसी प्रकार से समझेंगे। फिर उदयावली क्या है, बाहर के निषेक आना उसमें निके वो सारा समझेंगे। मान लो तुम रेलवे स्टेशन पर टिकट की कतार में खड़ी हो और तुम्हारा 50वां क्रमांक है, उतने में तुमने देखा कि तुम्हारी सहेली तीसरे क्रमांक पर खड़ी है, उसने भी तुम्हें बुलाकर उसके साथ तुम्हारा भी टिकट निकलवाया। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारा निश्चित क्रम छोड़कर तुमने पहले ही नंबर लगाया। उसी प्रकार जिस कर्म का उदय काल चल रहा हो उस कर्म के निषेक, देखो अभी कर्म के निषेक हमने क्या देखे थे, क्रम से उदय में आने योग्य है ना, ये पहला निषेक अभी वर्तमान समय में उदय में आ रहा है, उसके बाद अगले अगले सारे निषेक यहाँ पड़े हैं अंदर। तो एक आवली में जो उदय आ रहे हैं अभी वर्तमान समय से एक आवली तक के निषेक, उसको कहते हैं उदयावली, उदय की आवली। आवली एक काल का माप है, हमने देखा है ना एक सेकंड में सैकड़ों आवली, और एक आवली में असंख्यात समय, असंख्यात यानी कितने, जगन्य युक्ता संख्यात ये उसका नाप है, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, असंख्यात खाली इतना ख्याल रख। तो ये असंख्यात समयों की एक आवली वर्तमान समय से लेकर ये असंख्यात समयों तक, उसको उदयावली कहते हैं। अब जो उदयावली के बाद में जो उदय आने योग्य जो परमाणु है निषेक है, उसमें से कुछ परमाणु, सारे के सारे नहीं समझे इतने सारे है, तो उसमें से कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, उसको कहते उदीर्णा। उनमें से ऊपर से कुछ न कुछ परमाणु इसमें आकर उदयावली में जुड़ना, इसको कहना, क्योंकि अभी जो उदय आ रहे हैं उसको तो हम उदय ही कहते हैं, परंतु इस आवली के बाद वाले कुछ परमाणु इसमें आकर मिलते हैं तो उसको कहते हैं उदीर्णा होना, जल्दी उदय में आना। यानी जिसका उदय है ना उसी में आ मिल सकते हैं, समझो किसी कर्म का उदय ही नहीं होगा तो उसकी उदीर्णा भी नहीं होगी, ख्याल आता है। अभी विग्रह गति में कुछ कर्मों का, विशिष्ट कर्मों का उदय नहीं हो रहा तो वहाँ उसकी उदीर्णा होगी, उदय नहीं तो उदीर्णा नहीं हो सकती। तो ये एक रूल है कि जिस प्रकृति का उदय चल रहा है उसी की उदीर्णा हो सकती है। देखो ये बीच में आए ना, उसी प्रकार ये उदाहरण सिद्ध दृष्टांत के बाद, उसी प्रकार जिस कर्म का उदय काल चल रहा हो उस कर्म के निषेक अपनी अपनी निषेक रचना के अनुसार अपनी स्थिति पूरी करके निश्चित क्रम से उदय में आते हैं। अभी हमने देखा था ना, ये तो पहले बात, अभी उदय की बात नहीं, पहले भी बता रहे जैसे वहाँ लगातार वो कतार में खड़े थे, वैसे जिस कर्म का उदय चल रहा है उसके निषेक निश्चित अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वहाँ एक कतार में खड़े। क्रम से उदय में आते हैं। जब उस कर्म के कुछ काल बाद उदय में आने वाले निषेध अपना क्रम छोड़कर स्थिति पूरी होने के पहले ही, ये महत्व की बात है, स्थिति पूरी होने के पहले ही क्या करते हैं, वो उदय में आने वाले अन्य निषेकों के साथ शीघ्र उदय में आकर फल लेते हैं, तब उसे उदीर्णा कहते हैं। जैसे आशाता वेदनीय कर्म के निषेक कैसे क्रम से यहाँ लाइन में है, तभी क्या हुआ 11:30-12 बजे सामने भोजन देखा तो यहाँ के परमाणु जल्दी उदय में आ गए और उदय रूप तो थोड़ा ही उसका फल था, इसमें ये भी जुड़ गए। तो अभी 5 मिनट पहले तो कुछ नहीं था, अभी एकदम तीव्र भूख लगी। तुम क्या कहते हो वहाँ कैसे भूख लगी, वहाँ आशाता वेदनी है कि वो उदीर्णा हुई, ये उदीर्णा होते तब क्षुधा सुषा लगती है। ज्ञान की काहे की उदीर्णा हुई, उदय उदय हो जाएगा, उदय होगा तो ज्ञानावरण का उदय होगा तो क्या होगा, और ढक जाएगा। तो उदीर्णा मत करो उसकी। अरुचि हो जाती है उदीर्ण, उदय तो चल ही रहे ना, उदय भी कभी तीव्र कभी मंद होता है, अकेले उदीर्ण हर समय उदीर्ण होगी ऐसी बात है। अभी ये जो क्षुधा तृषा में भी तीव्र उदय को भी कहते हैं, तीव्र उदय या उदीर्ण, ऐसे दोनों ही कारण उसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक अनुभव वाला उदय हो तो भी वही फल मिलेगा। यहाँ मिलते हैं नहीं, क्या होता है ऑलरेडी जो है उसमें और उसका फल और बढ़ता है, या किसी की कोई कर्म ऐसे अभी आ गए कि उसमें अनुभव है ही बहुत तीव्र, तो उसको तीव्र उदय कहेंगे। उन निषेकों की स्थिति अधिक थी, परंतु उतने काल तक न रुककर वे निषेक समय से पहले ही उदय में आए, इसलिए उनकी उदीर्णा हुई कहती है। अब हम परिभाषा का अर्थ समझेंगे, उसमें एक शब्द है उदयावली। देखो लेफ्ट साइड में जो है ना आगमोक्त परिभाषा है, और ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ में 62 पेज पर, आप कौन सा, हाँ गुजराती है ना अपना, हाँ 62 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, अच्छा वो उदीर्णा जहाँ हमने पढ़ा था अभी जो पैराग्राफ पढ़ा ना उसके ऊपर का पैराग्राफ कि उदीर्णा यानी उदयोन्मुख कर्म जल्दी उदय में आना, उसकी दूसरी लाइन कि उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना, ये हमने परिभाषा पढ़ी थी। अब उसका अर्थ समझाते हैं, उसमें एक शब्द है उदयावली। आवली काल का नाप है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यह तो सर्वविदित है। 1 सेकंड में सैकड़ों आवली तथा 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार है, उनमें से जघन्य युक्त असंख्यात समय 1 आवली में होते हैं। अभी हमने तो ये देखा ही था, हमने पहले देखा था कि उदय काल में कर्मों की निषेक रचना होती है, प्रति समय क्रम से उदय में आने वाले निषेक एक के एक ऊपर एक रचित है, ऐसी कल्पना करेंगे। वर्तमान में उदय आ रहा निषेक नीचे होगा, वर्तमान समय से लेकर प्रति समय एक निषेक, इस हिसाब से 1 आवली काल तक उदय में आने वाले निषेकों को उदयावली कहते हैं। अभी ऊपर की वो फिगर में बताया ना, नीचे उदयावली बताइए, यानी 1 आवली काल में क्रम से उदय आने वाला एक एक एक, एक निषेक। उदयावली के निषेकों का उदय तो क्रम से आता ही रहता है, परंतु उदयावली के बाद उदय में आने वाले निषेक अपना क्रम छोड़कर उदयावली के निषेकों के साथ उदय में आते हैं, उसे उधिरना कहते हैं। नहीं ख्याल में आया? हाँ पता चला ना। हमारा नित्य परिचय का उदाहरण देना हो तो हम बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं तब उन्हें भूख नहीं होती, परंतु चार पाँच मिनटों में ही बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी जोरों से भूख लगी है, जल्दी खाना दोना। क्षुधा तृषा अचानक लगती है क्योंकि असाता कर्म की उदीर्णा या तीव्र उदय होकर क्षुधादि लगते हैं। ये तीव्र उदय भी उसने कारण दिया है। आयु कर्म की उदीर्णा होकर कदली घात होता है, इसका पता है तुम्हें? ये पहले हमने चर्चा की थी ना, आयु कर्म के जो निषेक है वो उर्वरित आयु के सारे एक साथ उदय में आ जाएंगे, एक अंतर्मुहूर्त में उसकी उदीर्णा हो जाएगी। वो किसमें हो सकती है उसकी बात चल रही है। तो कर्मभूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में आयु की उदीर्णा हो सकती है, उसे सोपक्रम आयुष्क कहते हैं। ये उसका नाम है, शास्त्रीय नाम सोपक्रम आयुष। इसमें भुज्यमान आयु के, भुज्यमान यानी जो भोग रहा है आयु, वर्तमान जो आयु है उसके शेष सभी निषेध जल्दी उदय में आकर सभी खिर जाते हैं। जीव मरण को प्राप्त होता है, इसे अपवर्त या कदली घास कहते हैं। और जो भोग भूमि के जीव है, देव है, उनका अपवर्त नहीं होता तो उनको कहते हैं अनपवर्त आयु वाले, अनपवर्त। हाँ नारकी भी जल्दी नहीं मरते, अनपक्रम वाले, अनपवर्त वाले। और ये ऊपर सोपक्रम है ना, तो उसके उल्टा निरुपक्रम, अनपवर्त अपवर्त और अनअपवर्त। अनपवर्त किसी करोड़ पूर्व आयु वाले जीव का कदली घात होकर एक अंतर्मुहूर्त में ही मरण हो सकता है। विषभक्षण, अकस्मात, पानी में तीन काल के समय, तीन काल के समय ना, क्योंकि भूतकाल के समय, क्योंकि एक समय में एक पर्याय, तो पर्याय कितनी होगी हर एक द्रव्य में? तीन काल में जितने समय उतने। नहीं समझे? देखो अभी मान लो एक घंटे में, अभी सेकंड में एक पर्याय समझ लो, तो एक घंटे में कितनी पर्याय होगी? एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनटों के एवरी मिनट के 60 सेकंड और, तो 60 × 60 3600, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब आपने मान लिया कि एक सेकंड में एक पर्याय होती है, तो एक घंटे में कितनी पर्याय होगी? 3600 पर्याय होगी, बराबर। वैसे अभी काल कितना है, पूरा अनादि अनंत काल कितना है, जितने तीन काल के समय है, तो पर्याय कितनी होगी द्रव्य की? तीन के काल समय, तीन काल के समय की, वो कभी टूटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अभी काल के समय जो बीत गए अभी क्या होगा, द्रव्य पर्याय भी ना हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं कभी। और एक एक द्रव्य में गुण कितने हैं, कितने आनंद, जीवानंद, सूर्यानंद, अनंत, तीन काल के समय अनंत, उससे आगे आकाशीय प्रदेश, और उससे आगे हाँ एक द्रव्य में गुण। देखो ये ख्याल रखने से पता चलता है कौन सा आनंद कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। देखा, तीनों कालों की पर्यायों का क्रम निश्चित है, उसमें कोई बदल नहीं सकता। जिस ये पढ़ा था, फिर पढ़ते, जिस प्रकार माला के मोतियों की अपनी अपनी सुनिश्चित जगह है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सभी अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है। ये सारे ही जितने हैं ना तीन काल के समय है, उतने ही प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने पर्याय हैं। और उस प्रत्येक पर्याय का क्रम निश्चित है, उसकी अपनी जगह निश्चित है, उसको अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। जिनेन्द्र भी अन्य किसी ने उसे निश्चित किया या कराया नहीं है। विवक्षित पर्याय के बाद विवक्षित पर्याय होने की योग्यता रूप धर्म उसी द्रव्य में विद्यमान है। ये द्रव्य का धर्म ही है उसका, तीनों काल के पर्यायों की योग्यता उसमें अभी पड़ी है। बाद में जब होगी जैसा निमित्त आएगा तब वो पलटेगी, ऐसी कोई बात ही नहीं। जिसमें से पर्याय प्रति समय उठ रही है ऐसे द्रव्य की ओर देखकर ही पर्यायों का यह क्रम निश्चित है, इसका निश्चय हो सकता है। हमने एक एक पर्याय की ओर देखा तो हमें पूरा क्रम कैसे निश्चित होगा, वो पूरा क्रम कहाँ पड़ा है, उसकी योग्यता द्रव्य में पड़ी है। तो द्रव्य की ओर देखने से ही उसका भरोसा हो जाएगा। एक ही पर्याय की तरफ देखकर अनेक पर्यायों का क्रम निश्चित नहीं होगा। उसी तरह अन्य द्रव्यों की पर्याय देखकर इस द्रव्य की पर्यायों का क्रम निश्चित है या नहीं बता नहीं सकेंगे। यह हमेशा जो बात आती है क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय कौन करता है, किसको होता है, या सर्वज्ञता का सच्चा निर्णय किसको होता है, जो अपने सर्वज्ञ स्वभाव का अनुभव करे उसको ही होता है। यानी अपने स्वभाव की तरफ देखकर उसका निर्णय होता है। और हम क्या करते हैं, कोई घटना करी हाँ क्रमबद्ध में ऐसा ही था, वो उसका सच्चा निर्णय नहीं है, वो बात है। जैसे अन्य मति कहता ना ईश्वर ने देखा वैसा होता है, ईश्वर ने किया वैसा, ये इसने क्रमबद्ध के माथे डाल दिया। सच्चा निर्णय करना है तो अपने सर्वज्ञ स्वभाव की ओर देखना पड़ेगा। अनेक लोग इसी बारे में घोटाला कर देते हैं, उलझन में पड़ते हैं। काल द्रव्य की पर्याय व्यवहार काल है, उस व्यवहार काल की ओर देखकर अर्थात परद्रव्य की पर्याय की ओर देखकर स्व या अन्य द्रव्य की पर्याय होनी है तब होगी। होनी है तो यानी विवक्षित वर्ष में, विवक्षित दिन के विवक्षित समय में यह पर्याय होगी, ऐसा निष्कर्ष निकालते। पर्याय का काल निश्चित है ऐसा जब कहते हैं तब वह उस द्रव्य का स्वकाल है, वह उस द्रव्य में है, व्यवहार काल में नहीं है। हाँ व्यवहार काल में हम बता सकते हैं, परंतु वो स्वकाल जब हम कहेंगे वो तो द्रव्य के अंदर होगा ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी द्रव्य का स्वकाल द्रव्य में है कि काल द्रव्य में है, हाँ तो वो द्रव्य की अपेक्षा से उसको देखना पड़ेगा। आज 9 अगस्त 99 सुबह के 11 बजे है, मेरा लिखने का राग जो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है उसका स्वकाल हम दिन में और घंटों में गिनेंगे तो कितनी सारी उलझने निर्माण होगी। यह तो मुंबई का इस जगह का व्यवहार काल यानी काल द्रव्य का स्वकाल है। तुम्हारी शोभा आंटी अमेरिका में है, वहाँ 9 अगस्त 99 के सुबह के 11 बजने में और 10.5 घंटे बाकी है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में यह वक्त स्थानिक समयानुसार पहले या बाद में होगा, इसलिए मेरी पर्याय व्यवहार काल में नापने से कोई फायदा नहीं है। मात्र सुबह के 11 बजे कहूँ तो प्रतिदिन ही सुबह 11 बजते हैं। केवल 9 अगस्त कहे तो हर साल 9 अगस्त आता है, 99 साल कहेंगे तो हर सदी में 99वां साल आता है, जैसे 1899 कहेंगे तो ईस्वी सन या विक्रम संवत या वीर संवत बताना पड़ेगा, और गहरा विचार करने पर उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी बतानी पड़ेगी। इससे भी आगे जाकर विवक्षित कल्पकाल को विचार में लेना पड़ेगा। विशिष्ट काल में मेरी पर्याय होगी यह तो परद्रव्य सापेक्ष कथन है, काल द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा कथन है। परद्रव्यों की ही अपेक्षा विचार में लेनी हो तो अन्य भी अनंत परद्रव्य है। जैसे कि अभी मेरे सामने यह कागज है, यह विशिष्ट शरीर इस समय मेरे संयोग में है, इसके हाथ की विशिष्ट क्रिया लिखने की हो रही है, हाथ में पेन की अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, उसकी स्याही के परमाणुओं की अवस्था बदल रही है, पेन में से कागज पर उतरकर विशिष्ट आकार में उनकी रचना हो रही है। मेरे मनचक्षु के सामने तुम दोनों हो, तुम्हें भी समझने की इच्छा है, एक ना दो इन सब अनंत द्रव्यों की अपनी अपनी विशिष्ट पर्याय इस समय है। वे सभी पर्याय अपने अपने द्रव्य की स्वकाल है। एक ही समय में पाई जाने वाली और अनुकूल लगने वाली अन्य द्रव्यों की पर्यायों को निमित्त कहते हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए निमित्त का कथन किया जाता है, परंतु उन्हें निमित्त कहने पर भी मेरी पर्याय अपने स्वकाल में मेरे द्रव्य में हो रही है, क्योंकि मेरी पर्याय तो मेरे से मेरे में होती है, अन्य द्रव्यों के निमित्त के कारण नहीं होती है। निमित्तों की पर्याय निमित्तों का स्वकाल है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में निबद्ध है। स्वचतुष्टय का परचतुष्टय के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें समझने के लिए सारा परद्रव्य सापेक्ष कथन किया जाता है। जब वो ऐसा आएगा तब ये ऐसा, हम ये तो परद्रव्य सापेक्ष कैसे नहीं है? हमें समझने, हाँ, शास्त्र में अकाल मृत्यु शब्द आता है, फिर भी मरण की पर्याय का वह स्वकाल ही है, उसका वह स्वकाल मरण ही है। काल को छोड़कर अन्य निमित्तों की हम चर्चा करते हैं तब काल नहीं वह अकाल है, इस न्याय से हम उसे अकाल मरण नाम देते हैं। जो अलग अलग निमित्त है उसमें से काल भी एक निमित्त है, तो उसकी अपेक्षा से हम काल को वहाँ बताते हैं। कर्म का उदय होगा या उदीर्णा कर्म की अपनी योग्यता है। कर्म की अवस्था यानी पर्याय उसके स्वयं के क्रम नियमित समय में ही होती है। छहों द्रव्य की सभी पर्याय क्रमबद्ध है। ज्ञान उसे पहले ही यानी पर्याय होने से पहले ही जान सकता है। ज्ञान की यह अपनी विशेषता है। ये तो हमें लगता है केवल ज्ञानी ने जाना तो हमारे हम पराधीन हो गए, हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? उन्होंने जाना इसलिए हमको क्रोध करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी 8 बजे से क्रोध करेंगे ये उन्होंने जाना है तो हमें क्रोध करना ही पड़ेगा ना, तो ऐसी पराधीनता नहीं है। ये ज्ञान की विशेषता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रत्येक द्रव्य में तीनों काल की पर्यायों की सुनिश्चित योग्यता पड़ी है। तो भगवान द्रव्य को जानते हैं, सारे ही अनंत द्रव्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, हमने तत्काल सूत्र में पढ़ा है। तो सारे ही अनंत द्रव्यों को ही जानते हैं कि उनके गुणों को भी जानते हैं, उनके पर्यायों को भी जानते हैं, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को भी जानते हैं, और जो योग्यता रूप धर्म द्रव्य में पड़ा है उसको जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। तो प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्याय उनके सामने है ना, उनके ज्ञान में खचित है। तो उन्होंने जाना ये ज्ञान की योग्यता है, और हम जो अभी प्रत्येक समय में कर रहे हैं कोई जो विभाग या स्वभाव, वो हम अपनी योग्यता अपने द्रव्य में से वो कार्य हो रहा है, उन्होंने जाना इसलिए हम पराधीन नहीं होंगे। ये जो लगता है कि हाँ हम पराधीन होंगे, क्या करें, ऐसा है नहीं कि ज्ञान उसे पहले यानी पर्याय होने से पहले ही जान सकता है। यह ज्ञान की अपनी विशेषता है। अवधि ज्ञानी भी जानता है ना, पर्याय होने से जान लेता है। अवधि ज्ञानी की क्या बात है, शुद्ध ज्ञानी जानेगा कि नहीं जानेगा? अभी ये ग्रहों के सारे जो धूमकेतु आने वाला है, ये जब भी ग्रहण लगने वाला है एक्लिप्स, ये पहले ही उसकी आगाही कर देते हैं, यानी ये तो श्रुत ज्ञान में भी आने वाली बात है। तो ज्ञान में ऐसी योग्यता होती है। अभी कल कौन सा वार है हिंदू बहन? संडे। आपने जाना कि नहीं जाना? तो हम भविष्य की बातें जान सकते कि नहीं जान सकते? हाँ, भविष्य की होगी। और संडे के बाद मंडे ही आएगा, ये भी पक्का है। उसके आगे के सारा क्रम आप जान रही हैं। ऐसा कितने काल तक? अब बहुत ने काल तक यही क्रम चलेगा। तो ये सारा हमने जाना कि नहीं श्रुत ज्ञान में? तो अभी वो संडे को आना ही पड़ेगा, कल वो कल संडे को ही आना पड़ेगा, मंडे आ नहीं आ सकता, वो पराधीन हो गया। ज्ञान ने जाना इसलिए वो पराधीन हो गया, ये ऐसी बात है। तो ये ज्ञान की अपनी विशेषता है। ज्ञान पर्याय का वह सामर्थ्य है। ज्ञान ने जाना इसलिए पर्याय को वैसा ही होना पड़ा, ऐसी पराधीनता पर्याय में नहीं है। प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय अपनी योग्यता से स्व सामर्थ्य से विद्यमान है। अकेले द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और गुण ही अपनी योग्यता से स्वयं सिद्ध ऐसे नहीं, पर्याय भी अपने समय स्वयं सिद्ध अपने से निर्माण हो। केवल ही भगवान ने जाना होगा वैसा हमें सम्यक दर्शन जब होना है तब होगा, इसका सच्चा निर्णय काल द्रव्य की पर्याय की ओर देखकर नहीं होगा, केवल ज्ञान की एक पर्याय की तरफ देखकर नहीं होगा, अपनी विद्यमान श्रुत ज्ञान की पर्याय की तरफ देखकर नहीं होगा, तो कहाँ देखकर होगा? परंतु सर्वज्ञ स्वरूपी निज शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा को देखकर देखना यानी यहाँ जानना हिस्सा लेना यानी उसमें लीन होकर उसकी श्रद्धा पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय होगा यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो सर्वज्ञता का निर्णय कहो या अरहंत को जानना कहो या सम्यक दर्शन कहो एक ही बात है उसी समय में ये सारा हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सर्व पर्याय सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं। यह अनुमान नहीं है वहाँ यह संभवता नहीं है हम कहते हैं ना हाँ ये परीक्षा अभ्यास करेगा तो 5 होगा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हुआ वो पक्का जानेंगे कि ये अभ्यास करने वाला है ये अभ्यास करेगा और यानी वो कर रहा है ऐसा वो जानेंगे और पास भी होगा कोई जो अभ्यास भी नहीं करेगा और कॉपी करके पास होने वाला है उसको भी जानेंगे वो इस तरह से पास है यानी वो होते हुए को जानते होगा ऐसा भी नहीं तीनों काल की जो है ऐसी जानते जैसे नेमिनाथ ने क्या बताया था 12 वर्ष के बाद द्वारका को जलती हुई देखा था जलेगी ऐसा नहीं देखा था जलती हुई देखा था हाँ युग पता है ना तीनों काल की तो प्रत्यक्ष जानते हम अपने द्वारा हम अपने ज्ञान द्वारा जब भगवान की सर्वज्ञता का निर्णय करते हैं तब उसी में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी गर्भित होता है हमने तो यहाँ क्रमबद्ध पर्याय पर बहुत चर्चा की थी सुबह हमारे हुए थे ना यहाँ 28 हुए थे उसमें उसके ऊपर गर्भित होता है ऐसा नहीं मानेंगे तो सर्वज्ञ शब्द का कोई मतलब ही नहीं रहेगा सर्वज्ञता ही धोखे में आ जाएगी जो सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करता है उसकी दृष्टि अपने सर्वज्ञ स्वभाव पर गए बिना नहीं रहती ये उसको मैं अभी उपयोग अंदर ले जाओ ऐसी कोई बात नहीं सर्वज्ञ की जो वहाँ निर्णय करता है उसका ज्ञान अपने सर्वज्ञ स्वभाव को पकड़ लेता है इसलिए यह निश्चित होता है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय होता है स्वामी जी ने बारंबार कहा है कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने वाले जीव की दृष्टि सर्वज्ञ स्वभावी निज परमात्मा की ओर गए बिना नहीं रहती अन्यथा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय यथार्थ नहीं होता ये तो शास्त्र की बातें एक दूसरे को बताना ये क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं है जब अंतर्मुख होकर अपने सर्वज्ञ स्वभाव को पकड़ेगा वो जीव तब कहेंगे कि इसका ये निर्णय सही है पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्याय की तरफ देखने से नहीं होता स्वद्रव्य की तरफ देखने से होता है यह अज्ञानी भोला जीव तो परद्रव्यों की पर्यायों की तरफ देखने में दंग है और दिखावे के लिए क्रमबद्ध पर्याय में है वैसा होगा कहता है यह उसका निर्णय यथार्थ नहीं है उसकी मान्यता में पर्यायों की पराधीनता है परंतु क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ ज्ञान करने वाला ज्ञानी पर्यायों की स्वतंत्रता को जानता है बेटियों तुम भी निज शुद्धात्मा की प्रतीति पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय करोगी इस बात का मुझे विश्वास है हम अगले भी थोड़ी अवस्थाएं अभी आज देखेंगे कर्म की शेष अवस्थाएं अभी तो हमने कितनी कितनी देखी बंध उदय सत्ता उदीर्णा उपशम इतना तो देखा था ना हाँ तो अभी और भी अवस्थाएं देखेंगे तुम्हारी कर्णानियोग संबंधी रुचि जागृत हो रही है देखकर मुझे आनंद हुआ तुम्हें पता ही कि गत 2 सालों से मैं सुबह 8:30 से 10 गुमरसार जीवकांड की टीका समय ज्ञान चंद्रिका भाग 1 पढ़ा रही थी कल ही ग्रंथ का पढ़ना पूर्ण हुआ अरविंद भाई दोषी ने कबूल किया भाभी मैं स्वयं इंजीनियर आज तक मैं गणित में स्वयं को बहुत होशियार समझता था परंतु इस ग्रंथ के गणित मुझे पढ़कर भी समझ में नहीं आते थे आपने पढ़ाया तो अब समझ में आए अरविंद भाई के निरंतर आग्रह के कारण ही मैंने यह क्लास लेना प्रारंभ किया था जयपुर शिविर से लौटने पर 26 अगस्त से हम दूसरा भाग कर्मकांड सीखना प्रारंभ करेंगे मेरे ख्याल से इसके बाद हम जयपुर गए थे बेटी इसमें से सूक्ष्म विषय और गणित पढ़ाते समय अनेक बार विचार आता है कि तुम दोनों और तुम्हारे समान बुद्धिमान युवा वर्ग सामने बैठकर पढ़ता तो कितना अच्छा होता तुम्हारे बड़े बड़े कॉम्प्यूटर्स और कैलकुलेटर्स फेल हो जाते हैं ऐसे, तो ये गणित है बुद्धि को चुनौती देने वाले। इन गणितों को सुलझाने पर, समझने पर एक निराला ही आनंद आता है। अनेकों को यही प्रश्न उठता है कि यह सब जानकर हमें क्या फायदा। हाँ इंदुबेन, आपका फायदा ये हर जगह आता है। एक तो उस संबंधी अपना अज्ञान दूर होकर जीव कर्म और अन्य अनेक बातों का स्वरूप स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आता है, यानी अपना अज्ञान दूर होना। कोई भी हम ज्ञान करते हैं तो सबसे उसका फायदा क्या है? अज्ञानता का नाश, यही ज्ञान का फायदा है। हम फायदा तो पैसों में और अन्य चीजों में गिनते हैं, ऐसा है नहीं है। तो ज्ञान का फायदा अज्ञान का नाश। इसके अभ्यास से कषायों की मंदता होती है और बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है। देखो ये तो पढ़ते रहने से हमने देखा था, शास्त्र की बातें या ये उपदेश सुनकर उस पर विचार करेंगे तो आठवीं यानी आयु को छोड़कर सभी कर्मों में अनुभाग भी घटता रहता है, उसकी स्थिति भी घटती रहती है। यानी क्या होगा, ज्ञानावरण का अनुभाग कम हुआ, यानी ज्ञान का उगाड़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या किया उसने उसके लिए, बादाम खाए कि क्या किया? ये शास्त्र का अभ्यास करते तो और वो बातें और अधिक गहराई सूक्ष्मता में जाने से उसके और सहज हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पहले कोई यानी वो बिना रट के भी याद हो जाती है, स्मरण में रह जाती है। दुनियादारी की सारी बातें हम विस्मरण हो जाता है और इसका स्मरण दिन ब दिन बढ़ता जाता है। बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है, यह भी एक उच्च प्रति का शुभ भाव है और इससे सातिशय पुण्य का बंध होता है। ये बंध के लिए नहीं हम करते, फिर भी वो सहज हो जाता है। कर्मों की अवस्था का जब ज्ञान होने लगता है, ये हरेक का प्रश्न है, करना नियोग क्यों पढ़ना, इतनी सूक्ष्मता में क्यों जाना गणित के, तो ये उपयोग तो सूक्ष्म होता ही है, बुद्धि की भी प्रगलभता बढ़ती है। कर्मों की अवस्था का जब ज्ञान होने लगता है तब कर्म के संबंध में अज्ञानतावश जो मिथ्या भ्रांति और भीति हुआ करती थी वह नष्ट हो जाती है। सर्वज्ञ भगवंतों ने ये सारी बातें प्रत्यक्ष स्पष्ट जानी है। इनमें से कई बातें अवधि ज्ञानी मुनि के ज्ञान में आती है। मुनियों ने आगम ग्रंथों में ये सारी बातें विस्तार सहित लिखी है। यह हम अन्य जनों पर महान उपकार है। ये ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं। नहीं तो आज के इस युग में ज्ञान का यह भंडार हमें कहाँ से उपलब्ध होता, कौन हमें पढ़ाता? इसके जानकार विद्वान होंगे भी और है भी, परंतु हमारे अनुकूल समयानुसार वे हमें पढ़ाए कैसे? हर एक को वो टाइम सुटेबल नहीं होता ना। अभी बहुतों की इच्छा है सूर्य आचार्य पढ़ने की, पर कितनों को टाइम होगा? अभी तो ये जो लिख के रखा है, तो ये जो प्रत्येक अपने समय के अनुसार पढ़ लेता है। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो है ही, ये जो टोडरमल जी ने ये जो सारे कर्णान योग के ग्रंथ लिखे, गोमर सार, लब्धी सार, सपना सार, ये सारे जीवकांड कर्मकांड तो लिखे कब? वो 300-350 वर्ष पहले, और अभी हम पढ़ रहे हैं। जिसे साक्षात हमें पढ़ा रहे, इतना सरल कर दिया सारा। तो ग्रंथों को ही गुरु कहें, जैसे वो तो हो गए पहले भूतकाल में, और उनके ग्रंथों के द्वारा हम वर्तमान वत उनसे पढ़ रहे हैं। सत्य महाव्रतधारी मुनियों ने परंपरा से प्राप्त ज्ञान की ग्रंथ रूप लिखित रचना की है। यह परंपरा भी सर्वज्ञ से चली आ रही है, इसमें कुछ समझाना नहीं है ना, इसलिए इस तरह पढ़ लेती हूँ। सर्वज्ञ ने भी प्रत्यक्ष जानकर कथन किया है, ये किसी की कल्पना ही नहीं है, असत्य तो है ही नहीं। जिन लोगों को तत्वज्ञान की रुचि नहीं है, सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञता स्वरूप जिन्हें पता नहीं, उन लोगों को ये सारी बातें झूठी लगती है, उनका इन बातों पर विश्वास नहीं होता। अब हम अपने मन से पूछे कि प्रतिदिन समाचार पत्रों के समाचारों में हम जितना विश्वास रखते हैं, क्या उसके कुछ अंशों में भी इस आगम शास्त्रों में विश्वास रखते हैं? जितनी रुचि से प्रतिदिन दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या उसके शतांश रुचि से भी शास्त्र पढ़ते हैं? वो पेपर नहीं आए तो कैसे मचलने लगता है, चाय नहीं जाता गले के नीचे। महीने भर में दैनिक एवं पत्रिकाओं पर जितने रुपए खर्चा करते हैं, क्या उतने जिनवानी खरीदने में खर्चा करते हैं? उसकी तो बात छोड़ो, रद्दी बेच कर आए हुए रुपयों जितनी रकम भी क्या हम प्रतिमाह जिनवानी के खरीदे पर लगाते हैं? ये अपने मन से पूछने की बात है ना। ये हमारी रुचि, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, और अपनी रुचि कहाँ है उसको भी टटोलना चाहिए। पड़ोसी से पेपर यानी समाचार पत्र मांगकर पढ़ने में हम कमी महसूस करते हैं, हमें शर्म लगती है। हर एक को अपना पेपर, वो भी सबसे पहले चाहिए। क्या जिनवानी पढ़ने के लिए इतनी बेचैनी होती है? कुटुंब के अनेक सदस्यों में एक ग्रंथ काफी लगता है। फुर्सत से टर्न बाय टर्न ग्रंथ पढ़ने की उदारता यह शिव दिखाता है। वहाँ ऐसा नहीं लगता, नहीं मुझे मेरा ग्रंथ चाहिए। कोई बिना मिलने वाली ऐसी कोई चीज लगती तो नहीं, मुझे सबसे पहले, नहीं भले कितने भी खर्चे हो जाए मुझे ये चाहिए। और बाकी वहाँ तो हिसाब हिसाब लगाएगा, ये ग्रंथ कितना महंगा है, क्या है क्या है। नहीं नहीं, वो तो हम पहले मैं पढ़ूंगी फिर बाद में वो पढ़ेगा, ऐसी बातें चलती है। एक ही कुटुंब के हर एक सदस्य के कपड़े अलग, कपाट अलग, कमरा अलग, बैंक का खाता अलग, धंधा व्यवसाय स्वतंत्र, परंतु ग्रंथ तो सब में मिलकर एक ही काफी लगता है। एक भी हो तो भला कहने की नौबत आई है, उतना हमी को तो बहुत है वो बताते। अपने ही दोषों का अवलोकन करने के लिए ये सारे प्रश्न उठाए हैं। दुनिया भर के सच्चे झूठे समाचारों में ये समाचार क्या सब सच्चे नहीं रहते? उनको भी अपना धंधा चलाना है, तो सब सच्चे झूठे समाचारों में हमें कितना रस है? और स्वयं का स्वरूप समझाने वाले ग्रंथों में हमें कितना रस है? इसकी जांच हम अपने में करें। दूसरों के दोष देखने की जरूरत नहीं है, ये हर एक को अपने को देखना है। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये बात नहीं है। हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं परंतु समय दर्शन नहीं होता, हमारा पुरुषार्थ कम पड़ता होगा ना? इस सवाल का एक ही जवाब है, तुम्हें अभी रुचि की कमी है। रुचि अनुयायी वीर्य ऐसा सिद्धांत है। बेटियों, मुझे कुछ समझता नहीं कहकर इस अभ्यास से मुंह मत मोड़ना, विमुख मत होना। शुरू शुरू में कुछ शब्द नए और मुश्किल लगते हैं, परंतु बारंबार सुनने पड़ने से हम उनसे परिचित हो जाते हैं। 10 बातें बताई हो तो उनमें से 2-3 तो समझेंगी कि नहीं? जितना ज्ञान होगा उतना आनंद होगा, तत्व ज्ञान की विशिष्ट दृष्टि तैयार होगी, लौकिक संकटों की भीति भाग जाएगी। देखो जीवन में तो कितनी कैसी कैसी परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि जो सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि हमारे पास तत्व ज्ञान है, उसकी दृष्टि अगर है, तो उन संयोगों की तरफ देखने पर भी हम ऐसे तीव्र संक्लेश परिणाम नहीं होते। दुख होगा उतनी मात्रा में, परंतु ऐसा नहीं होगा कि पूरा जैसे वैसे विचार आते हैं, चलो आत्मघात ही कर ले, ऐसे ऐसे कोई संकट आ जाते हैं। तो ऐसे जो वक्त है, ऐसे जो तो ये उस संकटों की भीति भाग जाएंगे, संकट भाग जाएंगे नहीं लिखा है, क्योंकि परद्रव्य में हम कुछ नहीं करते। जैसे भक्तामर पढ़ने से क्या होगा, अरे वो नाग है, वो नाग नहीं भाग जाएगा, वो उसके काटने से जो भय था, मरण का भय निकल जाएगा। सिंह मार कर खाएगा, वो भय निकल जाएगा, ये भय की भय का नाश होता है। हम क्या सोचते हैं, ये भक्तामर पढ़ेंगे तो ये संकट वो टल जाएगा, अरे संकट की भीति टल जाएगी। तो लौकिक संकटों की भीति भाग जाएगी। जीवन में अनेक बातों के प्रति होने वाले तीव्र राग द्वेष के परिणाम ठंडे पड़ेंगे, उसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी। मरण संबंधी भ्रांत कल्पनाओं और भय का निराकरण होगा। लौकिक शिक्षण के कारण जीवन सुधरा हुआ और सुखा हुआ होता हुआ हम देखते हैं। यह तो लोकोत्तर शिक्षण है, यानी हम देखते हैं 3 साल के बच्चों से लेकर हम कितना पढ़ाते हैं, क्योंकि उससे जो उर्वरित आयु है उसकी, वो उसकी कुछ सफल हो, वो लौकिक लोकोत्तर यानी ये अलौकिक, लौकिक और अलौकिक, हाँ लोकोत्तर, ये जो फिलोसफी है, लौकिक के विरुद्ध अलौकिक, यानी इसी को लोकोत्तर भी कहते हैं। यानी लोक से लौकिक शब्द तैयार हुआ, और लोक उत्तर, लोकों से पार, अन्य, लोकोत्तर शिक्षण है। इससे जीवन मरण और आगामी भव भी सुधरते हैं। उसमें क्या लौकिक शिक्षण से क्या होता है, एक भव वो भी सुधरेगा वो गारंटी नहीं। डॉक्टर होगा फिर आगे क्या, या कोई इंजीनियर हुआ या कोई बीए पास किया तो आगे की भी अभी क्या होगा, वो प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी, और भी चिंताएं बढ़ती चली जाती ना। तो इससे क्या होगा, ये जैन दर्शन पढ़ने से क्या होगा, यह जीवन मरण, मरण भी सुधरेगा क्यों? मरण का भय भी नहीं रहेगा ना, बहुत शांति से समाधि मरण हो जाएगा उसका, बिल्कुल सारे ही भय चले जाएंगे और आगामी भव भी सुधरते हैं, सुखावह होते हैं। इतना ही नहीं, भव का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अकेले अगला भव सुधारना नहीं है, हमें तो भव का अभाव करना है। तो भव का अभाव करने का जो हमने मार्ग स्वीकारा तो उसमें अगले भव अपने आप सुधर जाते, उसके लिए अन्य कुछ नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये जो हम शास्त्राभ्यास आदि करते हैं इसका साथी से पुण्य बनता है, तो अगले भव तो अपने आप सुधर जाते, वो भव सुधारने के लिए नहीं कर रहे। वो उस अभिप्राय से करेंगे तो ये तो पाप ही होगा, क्योंकि कुछ विशिष्ट वो निदान मानेगा ना मुझे भव सुधारने, ऐसी उसको चिंता ही नहीं रहती। क्योंकि अभी भव का अभाव ही करने निकला है तो एक दो चार भव जैसे भी आए उसमें उसको कुछ नहीं है, संयोग कैसे भी क्यों ना हो उसकी उसे चिंता रहती नहीं। कर्म की 10 अवस्थाओं में से हमने बंध सत्ता, उदय, उदीर्णा और उक्षम अवस्थाओं की जानकारी ली है। अब शेष अवस्थाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। कर्म के बारे में मात्र अल्प परिचय देने का मेरा विचार था, परंतु बहुत कुछ लिखा गया। हमें अभी गुणस्थान, मार्गणा आदि जीव की 20 प्ररूपणाएं भी संक्षेप में देखनी है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जीव ने कर्म बांधने के बाद उसका उदय आने तक उसमें उथल पुथल हो सकती है, यानी सत्ता में पड़े पड़े कर्मों में बहुत सारा कुछ बदल जाता है। जिस रूप में कर्म बांधा हो उसी रूप में उदय में आना, उदय में आएगा ऐसा निश्चित कह नहीं सकते। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों में बदलाव होते हैं, उनमें से उत्कर्षण और अपकर्षण, इन दो अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे। उत्कर्षण यानी बढ़ना, अपकर्षण यानी कम होना। प्रदेश और प्रकृति में तो हानि वृद्धि संभव नहीं है। अभी जो ज्ञानावरण दर्शनावरण है तो ज्ञानावरण तो ज्ञानावरण ही रहे ना, उसमें तो कुछ बदलाव नहीं होगा। अब जिस संख्या में परमाणु आए हैं उसकी संख्या तो कम हो ही नहीं सकती। वो जीव को छोड़कर जाएंगे तो ही वो प्रदेश बंध जो है तो वो संख्या की कटौती हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि बांधा है तो बांधा है, तो क्या कम हो सकता है? या तो स्थिति और अनुभव, यानी बाद में उदय आने वाले 70 कोड़ा कोड़ी वाले वो घटकर अंत कोड़ा कोड़ी हो सकते हैं, है ना, स्थिति घट सकती है। या अनुभव बहुत तीव्र था वो मंद 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 हो सकता है। या समझो अभी परिणाम ऐसे किए कि मंद पड़े हुए मिथ्यात्व को भी ऐसा तीव्र परिणाम करे कुगुरु के पीछे लग गए तो वो तीव्र मिथ्यात्व है, उसके अनुभव भी बढ़ सकते हैं, उत्कर्षण भी उसमें हो सकता है। जैसे अभी प्रायोगिक लब्धि में जीव आता है तो ये अंत कोड़ा कोड़ी हो गए, मान लो अभी यहाँ से कोई कुगुरु के पीछे चला गया और तीव्र मिथ्यात्व का बंध किया तो उसका मंद पड़ा हुआ मिथ्यात्व भी फिर से दोबारा अनुभव बढ़ता है, उसमें भी स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि अभी के परिणाम कर रहे हैं ना तीव्र, उसके मंद होते होते आए थे, अभी जो सत्ता में है वो बहुत मंद है, परंतु यहाँ से वो जीव पलटी खाए। ऐसे भी होते है, ये जो शास्त्र में आते ना, ये रुद्र वगैरह हुए थे मुनि, भावलिंगी मुनि, आधी आयु से भी ज्यादा भावलिंगी संत, और बाद में ऐसे मिथ्यात्व परिणमित हो जाते है, यानी ऐसे ऐसे वो मिथ्या मान्यता को प्ररूपण भी करते हैं, उसकी रचनाएं भी करते हैं। जैसे मारीची की कथा आती है ना 353 पाखंडी मत, तो ये भी पाखंड मत की स्थापना कर देते हैं और फिर मुनिपद छोड़ देते हैं, कुछ मृगाजीन या कुछ ऐसा ही धारण देते हैं, अन्य लोग जो शंकर की जो चर्चा करते हैं, इस तरह से कुछ न कुछ उनमें पलटाव आ जाता है। तो वो फिर से दोबारा अभी नया परिणाम ऐसा मिथ्या कुछ किया तो वो सारा ही मंद पड़ा हुआ सारा जो है वो तीव्र मिथ्यात्व रूप हो जाता है, क्योंकि सत्ता में तो है ना मिथ्यात्व। शायिक समय दृष्टि जो नहीं है वो मुनि अवस्था से भी पलटी खाकर फिर मिथ्यात्व में चला जाता है, और वो अकेला पहले तो मिथ्यात्व मंद पड़ा था, सत्ता वाला भी मंद पड़ा था, अब ये तीव्र मिथ्यात्व कर रहा है वो सत्ता वाला भी तीव्र मिथ्यात्व रूप परिणमित हो जाएगा। नया तो बांधता ही है तीव्र मिथ्यात्व, और पहले का जो मंद पड़ा हुआ वो भी तीव्र रूप हो जाता है, तो ऐसे उत्कर्षण अपकर्षण चलते रहते हैं। तो प्रकृति और प्रदेश में तो कुछ हानि वृद्धि नहीं होती, तो किसमें होती है? तो स्थिति और अनुभाग में यह हानि वृद्धि होती है। जीव के परिणामों के निमित्त से ये दोनों ही उनका एक काल है ना, तो वहाँ जीव के बिना परिणाम के अपने आप उसमें कुछ चेंज हो गया ऐसे नहीं होते। तो जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग बढ़ना इसे उत्कर्षण कहते हैं। जैसे अभी इसमें जीव शास्त्राभ्यास में लगा तो साता वेदनिया आदि कोई जो प्रकृतियां हैं उनमें जो अनुभाग है वो बढ़ता है उसका, प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग स्थिति बढ़ती है उसकी और अप्रशस्त में घटती जाती है। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होना इसे उपकर्षण कहते हैं। ये फिगर बताएं, उत्कर्षण यानी वो नीचे के नीचे के ऊपर जा, यानी उसमें से कुछ परमाणु उसमें स्थिति बढ़ना, इसलिए उसको ऊपर, यानी यहाँ जीव के प्रदेशों में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, ये चार्ट द्वारा समझाते हैं इसलिए वो ऊपर नीचे दिखाए। उसमें स्थिति बढ़ना यही उत्कर्षण है और स्थिति घटना यही अपकर्षण है। हमने पहले देखा ही था कि शास्त्र श्रवण, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय और भेद ज्ञान के कारण से कर्म की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है, नया बंध भी कम स्थिति वाला होता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अलग अलग परिणामों से अलग अलग बातें बनती हैं। हाँ उत्कर्षण हो सकता है,
हाँ
वो अशुभ कर्म प्रकृतियों में उत्कर्षण होगा और जो प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं उसमें अपकर्षण होगा। अलग अलग है ना, पुण्य प्रकृतियाँ भी है पाप प्रकृतियाँ भी है, तो जैसे भाव करेगा वैसे उन प्रकृतियों में लेना। मैंने पूर्व में बहुत पाप किया है और उस कारण बहुत का पाप कर्म बांधे है कहकर शोक करते रहना ठीक नहीं है। पूर्व के दुष्कर्मों के कारण पश्चाताप होने पर भी उसी के विचारों में अश्रुपात करते रहना उचित नहीं है, यानी उसी के बारे में सोचते सोचते क्या होगा, ये तत्व की बातें सोचो तो उसमें हो सकता है फिर भी हो जाए, मगर जो पहले जो कुछ पाप रूप भाव किए हैं उसी के बारे में सोचते रहने से कोई फायदा नहीं। यह हुई स्थिति और अनुभाग में होने वाली हानि या वृद्धि। अब प्रकृति में क्या बदल हो सकता है उसे देखेंगे। प्रकृति ने जो ज्ञान और दर्शन वगैरह देखे थे ना, प्रकृति में क्या बदल हो सकता है उसे देखते हैं। कोई भी मूल प्रकृति अन्य मूल प्रकृति रूप नहीं हो सकती, अर्थात ज्ञानावरण बदलकर दर्शनावरण या अन्य प्रकृति रूप नहीं होता। जो प्रकृति जो है ना वो उसी में रहेगी, ये मूल प्रकृति की बात है। मोहनीय कर्म में से दर्शन मोहनीय पलटकर चारित्र मोहनीय नहीं हो सकता, चारों आयु में से एक आयु पलटकर अन्य आयु रूप नहीं हो सकती, मनुष्य आयु पलटकर देवायु रूप नहीं होती। परंतु कुछ कर्म प्रकृति सजातीय यानी उसी जाति की अन्य प्रकृति रूप हो सकती है, इसे संक्रमण कहते हैं। ये संक्रमण नाम का हमको एक अवस्था पढ़नी ना, तो सजातीय अन्य प्रकृति रूप होना। जीव के विशिद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्व में बंधे हुए असाता वेदनीय कर्म प्रकृति के परमाणु संक्रमण होकर साता वेदनीय रूप परिणमित होते हैं। वो कथा याद है ना कि दो मित्र थे, वो गए कहीं रात बिताने थी, हाँ तो एक को तो कांटा चुभा, मंदिर में सोया रात भर, तो बाहर आते ही सुबह सुबह कांटा चुभ गया, और दूसरा वेश्या के पास गया और सुबह उसको मोती की माला मिल गई। तो देखो मैंने पाप किया फिर भी मुझे अधिक लाभ हुआ, तो कहते चलो अभी अवधिक ज्ञानी को जाकर पूछा, तो इसको कहते कि तेरे को बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली थी, परंतु वो कांटा चुभने पर निभाई, यानी उसका इतना अनुभव कम हुआ। और इसको मोती वाले को उसके पाप प्रकृतियों का भी इतना बढ़ गया कि राज मिलने वाला था पर और पाप किया, तो वो जो मिलने वाला शुभ प्रकृति का जो फल मिलने वाला था वो घट गया और उसको मोती की माला मिल गई। तो ऐसे परिणामों के कारण पूर्व में जो कर्म बांधे थे उसका जो फल है उसमें भी फेरफार हो जाता है। सातावेदनी रूप परिणमित हो जाते हैं और निधत्य निकाचित, ये दो परिभाषाएं पढ़ते हैं। संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य कर्म प्रकृतियों को निधत्ति कहते हैं, यानी जो कर्म प्रकृतियां हैं उसमें वो उसी रूप से रहती है, उसका संक्रमण नहीं होता है या वो क्रम से उदय में आती, उदीर्णा होकर उदय में नहीं आएगी। तो ऐसी जो कर्म प्रकृतियां हैं उसको निधत्ति कहते हैं। और निकाचित कि जिसमें संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण और अपकर्षण उसके अयोग्य कर्म प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। तो जिस रूप में इन प्रकृतियों का बंद हुआ है उसी रूप में मैं उदय में आती, यानी उदय में तो आएगी, ऐसा नहीं कि अंदर ही पड़ी रहेगी, उदय तो चलेगा परंतु उदीर्णा होकर नहीं उदय होगा, उसका संक्रमण नहीं होगा, उसका उपशम नहीं होगा। अर्थात उत्कर्षण उदीर्णा और अपकर्षण वैसी भी उदय में आएगी, अर्थात उनका फल उसी रूप से मिलता है। अनेक जानकार लोग भी इन निधत्ति निकाचित कर्मों का हवा बनाते हैं, ये कर्म हमें भुगतने ही पड़ेंगे, अन्य कोई चारा नहीं कहकर दूसरों को डराते हैं। देखो ये कर्म जीव को पुरुषार्थ करने में बाधा नहीं डालते, हमने सचमुच इन कर्मों को बुरा माना है क्या, इसका भी विचार करते हैं। दो तीन मिनट, चक्रवर्ती का पद महान पुण्य के उदय में प्राप्त होता है, यह पुण्य इस जाति का है कि उसे भोगना ही पड़ता है। निधत्ति निकाचित प्रकार का पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा, उसमें से छुटकारा नहीं है। तुम कहोगे हाश इतना ही होगा ना, पुण्य भोगना पड़ेगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा लगता है ना, हाँ यही है ना निधत्ति निकाचित, नहीं हाँ होती है ना, हो सकेगी वो भी। देखो तो सही, पाप कर्म भोगना ही पड़ेगा कहने पर यह जीव घबरा जाता है और पुण्य कर्म भोगना ही पड़ेगा कहने पर खुश होता है। इससे सिद्ध हुआ कि पुण्य बंध को उसने अच्छा माना, यह उसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। जिसकी एक भी तत्व संबंधी भूल रहेगी उसकी सातों ही तत्व संबंधी भूल होती है। हमारी मनुष्यायु पलट कर तिर्यंचायु नहीं होती, यह अच्छा है कि बुरा है। आयु कर्म की उदीर्णा यानी कदली घात होकर जल्दी मरण नहीं होता, इसे हमने अच्छा माना या बुरा? आयु कर्म भी निधत्ति निकाचित कहेंगे, उसकी भी उदीर्णा नहीं हो रही है, तो अच्छा है कि बुरा है? यानी वो जी रहा है, जी रहा है ना, यानी उसने अभी मरण नहीं हो रहा, उसकी उदीर्णा होकर नहीं मरेगा, तो हमने अच्छा ही माना ना, चलो अपना जीवन तो चल रहा है। क्यों? इसलिए किसी भी सुनी हुई बात पर अंधविश्वास न रखना, परंतु ग्रंथों के आधार से, शास्त्रों के कथन के आधार से उस उक्ति का यानी वो जो सेइंग है निधत्ति निकाचित वगैरह जो कुछ भी, उसका सच्चा अर्थ समझना चाहिए। अब तुम्हें ग्रंथों के आधार से अध्ययन करना सीखना होगा। हमारा यह पत्र रूप स्वाध्याय तो तुम्हें रुचि उत्पन्न कराने हेतु बताया हुआ नमूना है, सैंपल है, अभी ये कल ले लेंगे। वो सामान्य चर्चा भी करेंगे ना, गुणस्थान भी आगे लेना है ना, कि बस इतना ही? कौन जा रहे? आप जा रहे तो आने के बाद लेंगे, जो दीपाली भी आएगी उसने भी गुणस्थान नहीं सुना है। कल आप हो? अभी तो हो गया अपना समय। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा दे सहो।